الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو مثالی ماں کی کلاس ہم شروع کر رہے ہیں اپنی حضرت کی کتاب مثالی عورت میں سے، اور اس میں ہم چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا عنوان پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 124 کے اوپر تھے، 124. تو اس میں جو آخری پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں، وہ تھا کہ create effective family rules, make them clear and consistent. ٹھیک ہے، یعنی گھر کے اندر نا کچھ اصول و ضوابط بھی ہونے چاہیے، اور وہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ جو بنائیں تو وہ کلیئر ہونے چاہیے، یعنی لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے، سمجھ میں آنے والے ہونے چاہیے، اور کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. کنسسٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول و ضوابط ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ٹکراتے نہ، ایک دوسرے کا سے متضاد نہ ہو، کانٹرڈکٹری نہ ہو. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ یعنی ایسے اصول بنائے ہیں کہ جی جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ ناجائز ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن ابا حضور جو ہیں وہ مستقل جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں، یا اماں جو ہیں وہ جھوٹ بولے چلے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب بچے کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اصول انہوں نے میرے لیے تو یہ بنایا ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، لیکن اپنے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کو جائز قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی انکنسسٹنسی جو ہے نا وہ پھر رولز کے اندر ہوتی ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اب بچہ بھی جو ہے نا وہ پھر اس اصول کو فالو نہیں کرے گا. جب تک آپ کا ڈر خوف ہوگا اس وقت تک تو شاید کر لیں مجبوراً مار کے خوف سے، لیکن ادروائز وہ بھی جھوٹ ہی بولے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے بچوں کے لیے ایک اصول بنایا ہے، لیکن اپنے لیے اس اصول کو جو ہے نا وہ آپ نے ریلیکس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کانٹرڈکشن کو آپ کو بچوں کو سمجھانا ہوگا، کلیئر کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، ان کے لیے الگ اصول، آپ کے لیے الگ اصول کیوں ہے، یہ آپ کو پھر ان کو سمجھانا ہوگا، ان کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں. مثال کے طور پر فون کا استعمال، ٹھیک ہے. اب موبائل فون ایک ایسی چیز ہے اس وقت کے، ایون یہ کلاس لینے کے لیے بھی آپ کو موبائل فون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ یعنی آن لائن شاپنگ کے لیے، کہ بھئی ہم بازار میں جو ہے وہ اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ گروسری شاپنگ کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کے گھنٹوں ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور بازار میں ویسے بھی جو ہے وہ جانا ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے فون سے آرڈر پلیس کر دیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، پیسے دیے، اور ویسے بھی ان کے اندر یوزلی جو ہے وہ آن لائن پرائسز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی، وہ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹس وغیرہ دے کر کے پرائسز تو کم ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ آن لائن جو ہے وہ آرڈر پلیس کر رہی ہیں، اس کے لیے آپ فون استعمال کر رہی ہیں، بچوں کو آپ فون نہیں استعمال کرنے دے رہی. تو اب یہ ایک الگ کانٹرڈکشن ہے نا اسکولوں کے اندر، کہ بھئی بچوں کے لیے تو نو فون پالیسی ہے اور بڑوں کے لیے جو ہے وہ فون الاؤڈ ہے، بڑے جو ہے وہ فون پہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ گروپس کے اندر بھی ہیں، یعنی جو کلاس کے گروپس ہیں، جو جائز گروپس ہیں تو ان کے اوپر بھی ہیں، اور جو ہے وہ یعنی اور بھی آن لائن شاپنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچے کے دل میں بات آ سکتی ہے اور آئے گی کہ بھائی یہ کیا بات ہے، اپنے لیے الگ اصول، میرے لیے الگ اصول. تو بھائی اس بات کو کلیئر کر دیں کہ بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ موبائل فون کو غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کر رہے، الحمدللہ ہم جو ہے وہ اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اتنا ہم نے سیکھا ہے کہ اب جو ہے نا ہم اس موبائل فون کو یعنی گناہ کے کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم غلط کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم بلا ضرورت استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ضرورتاً استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ آپ جو ہے نا وہ ابھی چھوٹی عمر ہے، آپ کو صحیح اور غلط کی کا علم حاصل نہیں ہے، सही क्या है गलत क्या है उसका इल्म हासिल नहीं है। अभी आप जो है वो जो फोन के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं, अभी आप अपने आप को उन बुराइयों से बचाने के काबिल नहीं हुए हैं, बिकॉज आपकी नॉलेज कम है इस वक्त, आपकी मेच्योरिटी कम है इस वक्त, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो हम आपको फोन नहीं दे सकते हैं। मसला ये नहीं है कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, मसला ये है कि हमें शैतान के ऊपर एतमाद नहीं है, ठीक है ना, कि हमें शैतान के ऊपर एतमाद नहीं है कि वो आपको गलत काम में नहीं लगाएगा। हम शैतान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो आपको गलत काम पे नहीं लगाएगा। हम शैतान को मिसट्रस्ट ही करते हैं और हम शैतान को मिसट्रस्ट ही करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम आपको मोबाइल फोन नहीं दे रहे हैं, जबकि हम खुद जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जी जो आपने उसूल बनाए हैं ना घर के अंदर, तो ये उसूल जो है वो क्लियर होने चाहिए और ये कंसिस्टेंट भी होने चाहिए, ठीक है। यानी गैर जरूरी काम के लिए तो हमारे लिए भी जायज नहीं है फोन इस्तेमाल करना, ठीक है, और आपके लिए भी जायज नहीं है। हाँ, जरूरी काम के लिए हमारे लिए जायज है, आपके लिए उसके लिए भी जायज नहीं है, क्योंकि आपका इल्म अभी कम है, ठीक है। आप उनको बिल्कुल बताएं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। क्या मतलब है इसका कि जो इल्म वाला होता है, समझ वाला होता है ना, तो उसको गुमराह करना शैतान के लिए मुश्किल होता है, 1000 गुना ज्यादा दर्जा मुश्किल होता है, और जो इल्म वाला नहीं होता है तो उसको गुमराह करना शैतान के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। तो आप अभी छोटे हैं, आप अभी छोटी हैं, आप अभी बच्चे हैं, आप अभी मेच्योर नहीं हैं। मेच्योर होने का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि वो इल्म नहीं है, समझ नहीं है। सिर्फ बॉडीली मेच्योर होना जो है वो मेच्योर होने का मतलब नहीं होता, बल्कि मेंटली मेच्योर होना, स्पिरिचुअली मेच्योर होना, ठीक है ना, ये भी मेच्योरिटी, बल्कि ये तो असल मेच्योरिटी, स्पिरिचुअली मेच्योर होना और साइकोलॉजिकली मेच्योर होना है। तो अभी आप स्पिरिचुअली और साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकली मेच्योर नहीं हुए हैं, तो इस वजह से आपका इल्म कम है और आपको गुमराह कर देना शैतान के लिए और भी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इस वजह से हम आपको फोन नहीं दे रहे हैं। तो ये दो मिसालों से आपको समझाया, एक तो झूठ वाली मिसाल, तो झूठ तो भाई मेच्योर आदमी के लिए भी जायज नहीं है, झूठ तो अम्मी के लिए भी जायज नहीं है, बच्चे के लिए भी जायज नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ये विद दीज डिटेल्स ये बड़ों के लिए जायज है, ये बच्चों के लिए जायज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उसूल बनाएं, लेकिन उसूलों को वाजह भी कर दें, ठीक है। कोई सवाल तो पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट कहते हैं कि साइंस की रिसर्च ये बताती है कि टीच चाइल्ड व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है, कि यानी बच्चों को समझाएं कि क्या चीज काबिल कबूल है और क्या नहीं है, एंड टेल देम कॉन्सिक्वेंसेस दैट इफ यू विल डू दिस देन दिस विल हैपन, ठीक है, यानी उनको नताइज से आगाह करें कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। क्या मतलब कि बुरे जो काम है ना, जो यानी इस दर्जे की बुराई है कि उनको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बच्चों को बता दें जैसे झूठ बोलना इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यानी कंसिस्टेंटली ये वाला गलत काम किया झूठ बोलने वाला ना, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके नताइज होंगे कि हम आपको कोई बड़ी सजा भी दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरों को मारना, ठीक है, अपने बहन भाई को मारना या बदतमीजी, बड़ों के साथ बदतमीजी करना, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम उसको, ठीक है। और अगर आप ये दूसरों को मारेंगे तो आपको भी मार पड़ेगी, दूसरों को मारेंगे तो आपको मार पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसमें आपको कोई जो है ना वो मॉडर्न चाइल्ड रेजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, नहीं, बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत, और अल्लाह के बंदे प्यार मोहब्बत की लिमिट्स होती है, मारने के ऊपर प्यार मोहब्बत करेंगे तो वो जो है ना वो यानी क्रिमिनल बन जाएगा, वो क्रिमिनल बन जाएगा, तो उसके साथ ये ज्यादती ना करें कि उसको आप क्रिमिनल बना रही हैं, ठीक है। अगर मारेगा किसी को तो उसको मार पड़ेगी, ठीक है। ताकि उसको पता चले कि मार जो है ना वो कैसी होती है, चोट लगती है, तकलीफ होती है, ये उसको उसी वक्त पता चलेगा कि जब उसको खुद मार पड़ेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। नमाज छोड़ना, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। बेहयाई का काम करना या बेहयाई की बातें करना, इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस। ठीक है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई बेहयाई की जो है वो जोक्स करना। ठीक है, तो ये उसूल जो है वो घर के अंदर बनाने होते हैं, बच्चों को बताना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसूल बनाना जो है ना, कानून बना देना, ये भी मसले का हल नहीं होता। कानून बना देना महज ये मसले का हल नहीं होता, बल्कि कानून बनाने के साथ साथ माँ बाप की एक और भी जिम्मेदारी है। वो क्या है ये आप बता दें, क्योंकि इसी से रिलेटेड हो। ठीक है, फकत कानून बना दिया कि जी बेहयाई की बातें नहीं होंगी, फकत कानून बना दिया कि झूठ नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, फकत कानून बना दिया कि नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है, तो क्या इससे जो है वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? पहले ताल्लुक बनाना, नहीं बच्चों के साथ जो है ना वो जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन ताल्लुक बना हुआ होता है। कोई बच्चों अपने बच्चों के साथ ताल्लुक नहीं बनाया जाता, वो तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, माहौल देना, माहौल देना बिल्कुल सही जवाब है कि आप जो है वो उनको बेहयाई के माहौल में भेज रहे हैं और फिर उनको ये कानून बता रहे हैं कि जी आपने बेहयाई नहीं करनी है। ये कानून जो है ना ये जुल्म है, ये कानून जुल्म है, ये फायदेमंद चीज नहीं है, ये जुल्म है बच्चों के ऊपर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बेहयाई के माहौल से जितना मुमकिन हो सके बचाएं, फिर उसके बाद कानून भी बनाएं कि अगर वो करेगा तो फिर उसकी सजा मिलेगी। ठीक है ना, ये वही मिसाल है जो कि हमारे मशायख कहते हैं कि हम करते क्या है कि हम बच्चे को जो है ना वो समंदर में धक्का देते हैं और उसके कानून ही बनाते हैं कि खबरदार तुमने गीला नहीं होना है, खबरदार गीले हुए तो हम तुम्हें तुम्हारी पिटाई करेंगे। अल्लाह के बंदे, समंदर में धक्का किसने दिया? तुमने धक्का दिया है ना, और तुम जो है वो उससे तवक्को कर रहे हो कि तुमने गीला नहीं होना। तो ये तो माँ बाप खुद जालिम होते हैं जो कि ये वाली हरकत कर रहे होते। ठीक है ना, झूठ के माहौल के अंदर उनको रखेंगे और कानून ये बनाएंगे कि झूठ मत बोलना। ठीक, तो ये फिर ये कानून जो है ना ये वही कानून है जैसे कि हमारे मुल्कों के अंदर होते। ठीक है, अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, और जो है वो हर तरफ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और फिर जो है ना वो ये नहीं भाई, आपने क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करी? हर बंदा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और ये जो एक बंदा जो है ना वो कह के नहीं, वो उसको जो है वो कानून फॉलो करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर दफ्तर का कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। ठीक है, अब कोई बंदा जो है ना वो अपना जायज काम करवाने के लिए जाए, लेकिन आगे से जो है ना वो बंद कर दे, नहीं भी आपका काम हो ही नहीं सकता जब तक आप जो है वो चाय पानी का इंतजाम ना करें। अब जो है वो ये साहब जो है ना वो उनको कोई मौलवी साहब आकर के बोले कि नहीं रिश्वत देना हराम है, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, तो आप रिश्वत नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो भाई काम कैसे होगा? मेरा तो जायज काम है, मेरा तो हक वाला काम है, और यहाँ पर तो पूरा माहौल ही रिश्वत वाला है। रिश्वत के बगैर तो एक कागज जो है वो आगे नहीं बढ़ता, और यहाँ पर जो है वो आप यानी माहौल के ऊपर तो बिल्कुल भी काम नहीं है, और इधर से जो है ना वो ये रिश्वत देना हराम है। भाई अल्लाह के बंदे, जायज काम है। इस वजह से हमारे उलमा ने जायज काम के लिए दयानतन अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है कि भाई तुम नाजायज काम के लिए रिश्वत दे रहे हो कि जायज काम के लिए रिश्वत दे रहे हो। ठीक है, तो माहौल, माहौल के बगैर जो है ना वो काम नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ थ्योरेटिकली जहन में क्लियर होना चाहिए मामला कि हाँ भाई गलत गलत है, सही सही है, गलत गलत है। ठीक है, यानी रिश्वत के जरिए से काम होना ये गलत काम है, ये बिल्कुल जहन के अंदर बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, जहन की सोच बिल्कुल सही होनी चाहिए कि गलत गलत है, सही सही है। ये ना हो कि माहौल खराब हो चुका है तो अब जहन की सोच भी बदल दी कि हाँ भाई रिश्वत देना ही अच्छा काम है, रिश्वत देना ही अच्छा काम है, और बगैर रिश्वत के काम करवाना ये बुरा काम है। ये होता है जहन की सोच बदल जाना। सोच बदल जाना जो है ना, ये बहुत बुरी चीज, ये यानी ये आखिरी दर्जे की बुरी चीज है, ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है कि इंसान की सोच गलत हो गई। लेकिन जो अमल होता है, ये अमल जो है वो माहौल के हिसाब से, ठीक है, इस नुक्ते को जरा सा घुटनों पे जोर डालना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है, ऐसे इतना आसानी से बात समझ नहीं आएगी। उसी तरीके से घर के अंदर जो है ना, वो अगर आपने माहौल बनाया हुआ है तो आप फिर बच्चों से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि वो उसूलों को फॉलो करेंगे। अगर माहौल नहीं बना हुआ है तो अब जो है ना, वो बात बात के ऊपर उनको पिटाई हो रही है, बात बात पे उनको जो है वो जलील और रुसवा किया जा रहा है कि तुमने ये गलत क्यों किया, तुमने वो गलत क्यों किया, ठीक है ना भाई। आप माहौल नहीं बना सके, या बस है ऐसा मामला कि आपके यहाँ माहौल नहीं है, तो अब आप उनको हर चीज के ऊपर सजा नहीं दे सकते है ना। लेकिन कम अज कम दर्जे के अंदर जो चीज आपने फिर भी मेंटेन करनी है, बेशक माहौल जो है वो आप मजबूरन आप सही नहीं बना सके, या दूसरों के कंट्रोल में माहौल है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, वहां पे आप जो है वो माहौल को ठीक नहीं कर पा रहे, तो अब जो है ना वो आप इस तरीके से कानून भी फॉलो नहीं कर सकते कि बच्चे की बात बात पे जो है ना वो पिटाई हो रही है, नहीं कर सकते कानून। लेकिन क्या चीज फिर भी आपको फॉलो करनी होगी, क्या चीज करिए जल्दी से बताएं, क्या चीज फिर भी फॉलो करनी होगी, वो क्या? घर के अंदर माहौल आपके कंट्रोल से बाहर है, आप माहौल ठीक नहीं कर पा रहे, तो जब माहौल ठीक नहीं कर पा रहे तो अब कानून भी लागू नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक काम तो आपको फिर भी करना होगा, वो क्या? जहन साजी। एग्जैक्टली, यानी जहन का सही रहना, सोच का ठीक होना, ये फिर भी करना होगा। यानी ऐसा ना हो कि किसी की वजह से आपके घर का माहौल खराब है तो इस वजह से आप कानून नहीं बना सकते, बच्चों को सजा नहीं दे सकते, तो अब चलो जो है ना, लेट्स लेट्स रीडिफाइन, अब जो है ना वो हम कह दें कि हाँ भाई ये बुरी चीज ही अच्छी है और अच्छी चीज जो है वो बुरी है। अब बच्चों की तारीफात ही बदल गई, अब बच्चों की सोच ही बदल गई कि बुरी को अच्छा समझना शुरू हो गया, अच्छे को बुरा समझना शुरू हो गया। नहीं, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। सोच को फिर भी ठीक रखना पड़ेगा, सोच को फिर भी ठीक रखना पड़ेगा। तो बच्चों की सोच की इसलाह जो है ना, ये अब फिर भी करते रहें, ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें कि अल्लाह ताला इसका इस माहौल को अच्छा करने में आप हमारी मदद फरमा दीजिए। बहरहाल तो ये तो हो गई उसूलों के बारे में, ये सॉरी ये जो ये वाला नुकता था कि टीच चाइल्ड व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, आज के दौर के अंदर जो हमारे लिए नॉट एक्सेप्टेबल चीज है ना, ठीक है, वो सोच है। सोच का खराब हो जाना इज नॉट एक्सेप्टेबल, सोच का खराब हो जाना इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये आखिरी हद है, ये इस हद को क्रॉस नहीं किया जा सकता, ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले ये रेड लाइन दे दी है। कैसे दे दी है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर तुम किसी बात को, किसी गलत बात को देखो तो अपने हाथों से उसकी इसलाह करने की कोशिश करो, अगर अपने हाथों से उसकी इसलाह नहीं कर सकते हो तो अपनी जुबान से उसकी इसलाह करने की कोशिश करो, अगर जुबान से भी उसकी इसलाह नहीं कर सकते हो तो दिल में उसको बुरा जानो, बुरी बात को बुरा जानो, और इसके नीचे जो है वो ईमान नहीं है। यानी अगर तुम बुरी चीज को अच्छा जानना शुरू कर दोगे, अच्छा समझना शुरू कर दोगे, तो ईमान ही खत्म हो गया। तो ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी रेड लाइन है, ठीक है, कि हम सोच जो है वो खराब नहीं कर सकते, सोच खराब करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद ईमान नहीं बचता, ठीक है। इस दौर के अंदर हम बाहर की जाकर के क्या इसलाह करेंगे, हम अपने घर के अंदर बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं जो कि वही बड़े हैं, बूढ़े हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, हम उनको ठीक नहीं कर सकते। हाथ से ठीक करना तो दूर की बात, आप जुबान से भी उनको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब क्या उनकी गलत बातों को आप ठीक समझना शुरू करें, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए, खत्म हरगिज नहीं, आप बुरी चीज को अच्छा नहीं कह सकते, नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हम हरगिज हरगिज क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जब भी बच्चा तंग करे तो हर दफा बच्चे को मारने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट कम क्लोज टू द चाइल्ड फिजिकली, यानी आप बच्चे के करीब 1 फिट के फासले पर आकर खड़ी हो जाए, ठीक है ना। यानी ये बड़ा जबरदस्त किस्म का आदत जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल हरबा बता रहे, ठीक है, कि करीब आकर के खड़ी हो जाए। इस तरह से बच्चा सहम जाता है और उसको पता होता है कि ये खतरे की अलामत है, वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। अब ये छोटे बच्चे की बात हो रही है ना, 3 4 5 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप इस तरीके से सहमा सकते हैं अगर वो ऐसा कोई गलत काम कर रहा है तो, वरना खामखा जो है वो बच्चे को सहमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है, उम्मीद है ये इतना मुश्किल नहीं होगा उसको समझना, पीछे भी इसके ऊपर क्योंकि बात होती रही है ना कि आंखों में आंखें डाल करके बात करें या उसको बाजुओं से पकड़ करके उसको कह दें नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरीके से करीब आकर के खड़े हो जाना जो है ना छोटे बच्चे के लिए इतना भी काफी हो जाता है, ठीक है। चेहरे को जो है वो जरा सख्त बना देना, इतना तो माँ को आना चाहिए कि चेहरे को कैसे सख्त बनाते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है कि फिर बच्चे को 5A+ स्किल्स, 5A+ स्किल्स यानी 5 बेहतरीन काम सिखाएं। 5A+ स्किल्स ये हैं: नंबर 1, शोइंग अफेक्शन यानी मोहब्बत का इजहार करना, नंबर 2, अप्रिशिएट करना यानी हौसला अफजाई करना, नंबर 3, कंट्रोल एंगर ये गुस्से को काबू करना। ये भी बच्चे को जो है वो सिखाएं कि नहीं बेटा अब यहाँ पे इस वक्त आप जो है ना ये गलत काम कर रहे हैं, गुस्सा जो है ना ये इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। यानी बच्चा जब गुस्सा होता है ना तो फिर वो यानी या तो वो चीजों को फेंकता है या जो है वो जोर से किसी चीज को बैंग करता है, ठीक है, या जो है वो किसी को मारता है या ये कि चिल्लाता है, ठीक है। ये गुस्से के इजहार होते हैं। गुस्सा वरना एक बड़ी अंदरूनी किस्म की चीज है, गुस्सा जो है ना ये रूहानी बीमारी होती है, ठीक है, जो कि रूह के अंदर होती है। ये गुस्सा बाहर नजर नहीं आता, ठीक है। झूठ जब बोलते हैं ना तो झूठ जो है वो सुनाई देता है, कानों में आता है, पता चलता है कि हाँ भाई ये झूठ है। गुस्सा जो है ना ये कोई अमल नहीं है कि जो कि आपको नजर आए। हाँ, गुस्से के नतीजे में कुछ अमल होते हैं जो कि इंसान करता है, वो अमल जो है ना वो यानी जुबान से चीखना चिल्लाना। अब चीखने चिल्लाने को गुस्सा नहीं कहते, उसको चीखना चिल्लाना कहते, लेकिन चीखना चिल्लाना ये गुस्से की वजह से होता है, ये सिम्पटम है गुस्से का। मारना पीटना ये गुस्सा नहीं कहलाता, मारना पीटना इज नॉट गुस्सा, मारना पीटना इज मारना पीटना, ये गुस्से की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जब सिम्टम्स नजर आते हैं तो फिर उसको मना किया जाता है कि नहीं ये आपके अंदर गुस्सा है, इसको जो है वो गुस्से की वजह से आप ये काम कर रहे हैं तो इसकी आपको इजाजत नहीं है। टीच देम टू अपोलोजाइज, माफी मांगना, ठीक है। जैसे बच्चों की आपस में कभी लड़ाई हो जाती है तो फिर बच्चों को कहते हैं नो से सॉरी, माफी मांगे और फिर हग करें या जो है वो गले लगाएं। इस छोटे बच्चों के साथ जो है वो इस तरीके से माफी मांगना माँ बाप को सिखाना होता है उन्हें। टू एस्क फॉर अपॉलोजी, एस्क फॉर अपॉलोजी, अच्छा नहीं सॉरी, पहला वाला था माफ करना और दूसरा है माफी मांगना, ठीक है। तो जब जब कोई आपको आपसे माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर देना, या अगर कोई माफी नहीं भी मांग रहा लेकिन ऐसा है कि भाई जिसको आप माफ कर देना चाहिए तो माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों चीजें जो है बच्चों को सिखानी है। ये 5 सुनहरी बातें बच्चे को हमें शुरू शुरू में सिखानी चाहिए, फिर बच्चे को समझाएं कि वो जिम्मेदारियों को कबूल किया करे, यानी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करें कि हाँ भाई ये वाला काम आपने करना है, या आपने कमरे की डस्टिंग करनी है, या आपने जो है वो अपने कबर्ड को जो है वो ठीक करना है, अपने क्लोजेट को जो है वो ठीक करना है, कपड़ों को तय करना है, सुबह को उठ करके आपने जो है वो अपने जो जो ब्लैंकेट है, जो क्विल्ट है, उसको जो है अपने तय करना है, अपने बिस्तर की चादर को जो है वो सीधा करना है। ये जिम्मेदारियां देना, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं, यहाँ से जो है वो बात शुरू होती है। फिर जैसे जैसे और बड़े होते हैं तो उनको जो है वो इवन किचन के भी छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी दे दी, बच्चियों को अलग किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं, लड़कों के लिए अलग किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक ठीक है, दरवाजा खोलना जब कोई बाहर आ रहा है घर के अंदर, अगर कोई लड़का है तो उसकी जिम्मेदारी लगानी है कि जी आपने जाकर के जो है वो दरवाजा खोलना है, ठीक है, आपने बाहर से जो है वो ये चीज लेकर के आनी है, इस तरीके की जिम्मेदारियां बच्चों को लगाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि सेफ्टी के उसूलों के तहत ही हो, ऐसा ना हो कि जी आपने छोटे बच्चे को जो है वो मार्केट भेज दिया, पता चला वो गाड़ी के नीचे आकर के ना अल्लाह ताला के पास पहुंच गया, ठीक है, तो ऐसी जिम्मेदारियां देनी है जो कि उसकी उम्र के हिसाब से वो निभा सके, ठीक है। अगर बच्चा कोई गलती करे तो बच्चे को गलती पे नादिम होना भी सिखाएं, ये हो चुका पीछे, फिर बच्चे को माफी मांगना भी सिखाएं ताकि वो बड़ों से माफी मांगे। फिर एक नया अहम नुक्ता है कि डिवेलप लव ऑफ रीडिंग इन द चाइल्ड, डिवेलप लव ऑफ रीडिंग इन द चाइल्ड, यानी बच्चे के अंदर किताबें पढ़ने की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप उनके सामने ऊंची आवाज में किताब पढ़ें, लाइब्रेरी जाएं, बच्चा किताबों को जब देखता है तो उसके दिल में किताबों से ताल्लुक पैदा होता है, ठीक है, बच्चा किताबों को जब देखता है तो उसके दिल में किताबों से ताल्लुक पैदा होता है, तो ये उसूल हजरत ने बयान फरमाया है और यकीन यही ऐसे ही है, किताबों को देख के हमारे भी दिल में किताब पढ़ने का ख्याल पैदा होता है, ठीक है, लेकिन बच्चा जो है ना वो उसको इससे एक स्टेप ज्यादा की जरूरत होती है कि जब वो अपने बड़ों को किताब पढ़ता हुआ देखता है ना, तब उसके अंदर किताब को पढ़ने का शौक पैदा होता है। अगर वो बड़ों को देखता है कि वो हर वक्त मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, तो बच्चों को भी हर वक्त जो है ना वो मोबाइल ही चाहिए होता है, उसके दिल में शौक होता है कि मैं भी मोबाइल पे, बच्चों बच्चा बड़ों को कॉपी कर रहा होता है और बच्चा बड़ों को देख करके ना उसके अंदर तलब पैदा हो रही होती है चीज की, ठीक है। तो इस वजह से जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लेवल के लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपको बच्चों को पढ़ने का शौक लगाना है ना, तो आप खुद जो है वो किताब लेकर के बैठिए और पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, तो बच्चे के अंदर खुद ब खुद शौक पैदा होगा। एक बात जो है वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दिल में डाली है कि हमें अक्सर जो है ना वो ये बड़ी फिक्र पड़ी रहती है कि जी बच्चे जो है ना वो बहुत फारिग हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है और बड़ा जो है वो टाइम उनका जाया हो रहा होता है, ठीक है, तो टाइम को अच्छा लगाने के लिए जो है ना वो बेहतरीन तरीका ये है बच्चों के कि उनको मुताले के ऊपर लगाया जाए, मुताले के ऊपर, ठीक है, जब उनको रीडिंग आ गई है, कॉम्प्रिहेंशन उनकी बन गई है, चाहे उर्दू की बनी हो चाहे इंग्लिश की बनी हो, तो अब उनके लिए अच्छी किताबों को मुहैया करना ये भी करने का एक काम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप में से एक उम्मीद है कि वो मौजूद होंगे यहाँ पर, तो उनको जो है वो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि जी हमारे बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा फारिग रहते हैं, तो अब उनको हम एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, उनको लिख करके जवाब देने का अभी तक मौका नहीं मिला था, अच्छा हुआ हजरत के वास्ते से अल्लाह ताला ने बात सामने ला दी कि बच्चे फारिग हैं तो हम उनको अब एक्स्ट्रा होमवर्क दे दें, तो ये बाय द वे मर्दों के साथ पहले बात हो चुकी है कि ये खामखा के एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना ये कोई तरीका नहीं है कि बच्चों को जो है ना बस मशगूल रखा जाए, ठीक है भाई, जब आपके पास अगर ऑल्टरनेटिव तरीका है या अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं, तो वो वाला काम किया जाए ना जिससे कि उनको फायदा होगा। हाँ, होमवर्क अगर वाकई एसेंशियल है तो एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया जा सकता है बच्चे को मशगूल रखने के लिए, लेकिन एसेंशियल नहीं है, टीचर भी जो है वो उसको अहम नहीं समझ रहा है, उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग देम बिजी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दें, भाई किताबें खत्म हो गई हैं क्या, राइट, किताबें हैं और सबसे बेहतरीन किताब जो है वो अल्लाह का कुरान है, अब हिफ्ज कर लिया कुरान को तो अब इसका मतलब है कुरान से और मजीद कोई काम नहीं करना, ठीक है भाई, हिफ्ज कर लिया, अल्लाह ताला का इतनी बड़ी नेमत मिल चुकी है, तो अब जो है वो कुरान की तफसीर क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है, जब बच्चा इस उम्र में आ जाए माशाल्लाह अच्छी खासी चीजों को समझ रहा है, अच्छी खासी अल्लाह ताला ने जहानत दी है और माशाल्लाह नेकी का शौक भी दिया है, तो अल्लाह ताला के कुरान की तफसीर, राइट, ये तो एक ऐसा मौजू है कि जिसमें यानी कितनी ज्यादा गहराई है, और अल्लाह ताला ने हमें मारुफुल कुरान जैसी तफसीर भी अता फरमाई हुई है, राइट, हम किसी वो पता नहीं कौन सी जुबान में अगर पैदा हुए होते ऐसी जगह पे जहाँ पे मारुफुल कुरान ना मौजूद होता, बल्कि सही बात यह है कि मारुफुल कुरान तो उर्दू के अंदर है, ठीक है, किसी दूसरी जुबान में तो उसकी ट्रांसलेशन होती है, अगर हम अंग्रेजी में मारुफुल कुरान पढ़ें तो वैसा मजा नहीं आता, वैसा फायदा नहीं होता जैसे कि उर्दू में पढ़ने से होता है, क्योंकि ओरिजिनली ऑथर ने तो उर्दू में लिखा है, अल्लाह ताला ने हमें उर्दू की समझ अता फरमाई, उर्दू पढ़ने का जो है वो इल्म अता फरमाया, अब हम मारुफुल कुरान से फायदा ना उठाएं बल्कि हम जो है वो एक्स्ट्रा होमवर्क करके अपने आप को मशगूल रखें जिसकी के टीचर खुद जो है वो जरूरत महसूस नहीं कर रहा, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे बुजुर्गों के अहवाल हालात उनके ऊपर किताबें मौजूद हैं, तो उन किताबों के अंदर भाई मुताले से असल इल्म होता है। ठीक है, बाकी जो जो स्कूलों के अंदर जो इल्म पढ़ाया जा रहा होता है ना, ये असल में ये मुताले के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे उस्ताद साहब जिनके साथ हमने इल्म पढ़ना शुरू किया था, सर्फ नहव वगैरह जिनसे हमने बिल्कुल सबसे पहले पढ़ी थी, तो वो बड़ी प्यारी प्यारी बात किया करते थे कि जो आलिम बनते हैं ना, आलिम यानी मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, 8 साल जो है वो आलिम बन रहे होते हैं, तो 8 साल जो है ना वो सिर्फ उनको मुतालिया करने की इस्तेदाद बनाई जा रही होती है। उनको सिखाया जा रहा होता है कि जी मुतालिया कैसे करना है, और किताब के जो क्या कहते हैं जो कंटेंट है, जो मवाद है, उसको कैसे समझना है। फिर इल्म हासिल करना तो वो 8 साल के बाद शुरू करते हैं, जब वो फिर उस इल्म की बुनियाद पर मुतालिया करते हैं ना, असल में तो इल्म की एक्विजिशन उस वक्त शुरू हो रही थी। तो यही मामला स्कूलों का भी है, स्कूल भी तो मदरसा ही होता है ना, अरबी में स्कूल को मदरसा कहते हैं। ठीक है, तो स्कूल के अंदर जो मैथ साइंस और ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है ना, ये असल इल्म नहीं है, ये तो इल्म के लिए जमीन तैयार की जा रही है खाली। आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है, आपको जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाए जा रहे हैं। असल इल्म तो उस वक्त होगा कि जबकि बच्चा खुद रीडिंग शुरू करेगा, खुद मुतालिया शुरू करेगा। ठीक है, तो खाली जो है ना वो होमवर्क जो है ये इल्म देना नहीं होता, बल्कि असल इल्म जो है वो मुताले के जरिए से बच्चे को हासिल होता है। तो उसके लिए फिर जो है ना वो अब किताबों का मुहैया करना और मुताले का जो है वो माहौल बनाना, ये सब जो है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। ठीक है, कि करने का काम है। कुरान की तफसीर बच्चों को अगर देंगे तो सिर्फ पढ़ने से उसको समझ आएगी। देखिए, अभी जो हम जिन बच्चों की बात कर रहे थे ना कुरान की तफसीर के लिए, ये बच्चे हैं 15 साल के बच्चे। ठीक है, 15 साल के बच्चे, तो 15 साल से छोटी उम्र में जो है ना वो कुरान की तफसीर जो है वो ना तो समझ में आएगी और ना जो है वो उसको दें। ठीक है, तो 15 साल से कम की बात कर, अब 15 साल के, 15 साल और 15 साल से ऊपर वाले जो है ना वो कुरान मजीद की तफसीर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक और भी बात कही है, आपका जो दूसरा जुमला है ना, ये भी उस लेकिन का जवाब है कि पेरेंट्स को साथ होना होगा। आई थिंक यू थिंक राइट। ठीक है, कि पेरेंट्स को साथ होना होगा, लेकिन जब बच्चे जो है वो अच्छे दीनी माहौल के अंदर हैं, ठीक है ना, उनका जो है वो पेरेंट्स के साथ भी एक दीनी ताल्लुक, यानी पेरेंट्स ने भी घर के अंदर दीनी माहौल बनाया हुआ है, और फिर उनका बुजुर्गों के साथ उनका जो है वो दीन के जो असातिज़ाए कराम है उनके साथ भी ताल्लुक है। ठीक है ना, तो अब इस ताल्लुक के होते हुए बच्चा जो है ना, 15 साल का बच्चा, इवन 14 साल के ऊपर भी बच्चा जो है वो तफसीर को खुद से समझ लेगा, क्योंकि उसका असातिज़ा के साथ ताल्लुक है। वो पूछेगा, वो अरबी जुबान भी जो है वो पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, अरबी जुबान भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बच्चा जो है ना वो तफसीर से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। ठीक है, इससे कम उम्र का बच्चा वो तफसीर से फायदा नहीं उठा सकेगा, और कोई ऐसा बच्चा कि जो कि दुनियादारी के माहौल में है वो तफसीर से फायदा नहीं उठा सकेगा। यानी ऐसे माहौल के अंदर जहां पर जो है ना वो उलमा के खिलाफ बातें हो रही होती हैं, जहां पर दीनी अकायद के खिलाफ बातें हो रही होती हैं, ऐसा बच्चा जो है ना वो अगर कुरान मजीद की तफसीर पढ़ता है ना, तो वो फिर उसका उस्ताद जो है ना वो फिर शैतान होता है। उसका उस्ताद कौन होता है? शैतान होता है। पढ़ तो वो कुरान की तफसीर रहा है, लेकिन शैतान जो है वो उसका उस्ताद बना हुआ है, वो उसको तफसीर से नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हम जिस माहौल के बच्चों की बात कर रहे थे, असल में किसी वालदा साहिबा को सवाल का जवाब दे रहे थे ना, असल में आपको सुना होगा आपने कि उनको बोल रहे हैं कि भाई आपने जो है कहा है कि जी उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया जाए, तो हम उनको बता रहे हैं, तो उनके घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं है। ठीक है, और उनके बच्चों का जो है ना वो असातिज़ा और मशायख के साथ ताल्लुक है। तो अब ऐसे बच्चे को जो है ना वो मुताले के ऊपर लगाना, ये उसके लिए फायदेमंद है, बजाय इसके कि उसको खामखा के एक्स्ट्रा होमवर्क से करें। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ ही सारी की सारी बात होती है, और कॉन्टेक्स्ट को समझ करके फिर बात जो है वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया। नदाला आपको जो है खैर था फरमाए। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दुआ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।